أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: اللهم أدع حق ما مضى من شهر رمضان واغفر لنا تقصيرنا فيه وتسلمه منا مقبولا ولا تؤاخذنا بإسرافنا على أنفسنا واجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اس ماہ رمضان کا جو حق ہماری گردنوں پر رہ گیا ہے وہ ہماری جانب سے ادا کر دے، ہمارے قصور کو معاف کر دے، اور اس ماہ رمضان اور اس کی عبادات کو پورا کا پورا ہم سے قبول فرما لے، اور اس ماہ میں ہم نے جو اپنے نفسوں پر زیادتی اور گناہ کیے ہیں اس پر ہماری پکڑ نہ کر، اور ہمیں مرحومین میں سے قرار دے، ہمیں محرومین میں سے قرار نہ دے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اور یہ دعا اس آخری عشرے میں روزانہ رات میں پڑھی جانے والی دعا ہے کہ اے اللہ، اللہم اجعلنا من المرحومین ولا تجعلنا من المحرومین. خوب، آپ بھی ساتھ پڑھیں، اللہم. ایسے نہیں، یہ تو چھت سے اوپر نہیں جائے گی دعا، آپ کو تو عرش تک پہنچانی ہے، تو دعا بھی تگڑی ہونی چاہیے نا. اللہم واجعلنا من المرحومین. ہاتھ اٹھا کے تو دعا کرے نا، کوئی یوں بیٹھا ہے، کوئی یوں بیٹھا ہے، کوئی ٹیڑھا بیٹھا ہے، بھائی دعا کو دعا کی طرح مانگو نا. دعا کیسے مانگی جاتی ہے؟ منہ پہ ٹیپ لگا دیں، اللہ مجھے کھانا دے دے. وہ ناک سے کھانا کھایا جاتا ہے، کان سے کھانا کھایا جاتا ہے، منہ سے کھانا کھا، منہ کھولنا چاہیے جبھی تو کھانا ملے گا نا. تو دعا مانگیں گے جبھی تو اللہ کو پتہ چلے گا دعا مانگ رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ جو ہے اللہ کہہ گئے چلو جی یہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں، نہیں، دعا کو دعا کی طرح مانگے، اللہم اجعلنا من المرحومین ولا تجعلنا من المرحومین. ایک دفعہ اور، اللہم اجعلنا من المرحومین ولا تجعلنا من المحرومین. یعنی اے اللہ، ہمیں اس ماہ میں اپنے مرحوم بندوں میں شامل فرما، ہمیں محروم بندوں میں شامل نہ فرما. وہ محروم کسے کہتے ہیں؟ جو مر جاتا ہے نا، کہتے ہیں محروم ہو گئے. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا کرو کہ اللہ تمہیں محروم قرار دے، یعنی اس مہینے مر جائیں. کیا مراد ہے اس سے؟ مرحوم سے مراد در حقیقت یہ نہیں ہے کہ امام کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ آپ اس مہینے میں مر جائیں، اے اللہ مجھے مردہ بنا دے اس مہینے، نہیں. مرحوم سے مراد یہ ہے کہ جس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اسے مرحوم کہا جاتا ہے. چونکہ انسان مرنے کے بعد اللہ کی رحمت کا زیادہ مستحق ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مرحوم ہو گیا. وإلّا انسان زندہ ہوتا ہے جب بھی مرحوم ہوتا ہے، آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی سحری کی افطاری کی درس سن رہے ہیں، یہ سب اللہ کی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اعتکاف میں ٹوپی بھی سر پہ آ جاتی ہے، شریف بھی بن جاتے ہیں، واٹس اپ بھی چھٹ جاتا ہے، موبائل بھی لے لیا جاتا ہے، درسوں میں درس ہو رہے ہیں، جی اسلامی بنانے کے مختلف گر آزمائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اتنی دیر سونا، اتنی دیر اٹھنا ہے، آج یہ ہے، آج وہ ہے. تو یہ سب کیا یہ رحمت ہے یا نہیں ہے؟ اور آپ بخوشی قبول کر رہے ہیں اس کو، کیونکہ آپ اس کو رحمت سمجھ رہے ہیں، اور رحمت سمجھ رہے ہیں تو آپ اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو مرحوم کسے کہا جاتا ہے؟ مرحوم اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. جیسے مقتول کسے کہا جاتا ہے؟ جسے कत्ल किया जाए, ठीक है ना। एक कातिल होता है, एक मकतूल होता है, एक कत्ल होता है। कत्ल यानी वो फेल, कातिल कत्ल करने वाला, मकतूल जो मर जाए। एक राहिम होता है, रहम करने वाला, वो फेल रहमत करना है, और जिस पर रहमत की जाती है उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नहीं, जोर से, सो तो नहीं रहे, और जोर से बोलें, मरहूम। मरहूम यानी जिस पर अल्लाह की रहमत हो। अब दुआ समझ में आ गई, इसका मतलब ये नहीं आप जाके अम्मी से शिकायत करते मौलाना साहब ने कहा कि इस महीने मर जाओ, नहीं, मरहूम बन जाए। मरहूम बन जाए नहीं, अल्लाह की रहमत अपने ऊपर वाजिब कर लें। वला तजअलना मिनल महरूमीन, और अल्लाह हमें महरूम बंदों में से करना दे। महरूम किसे कहते हैं? जिसे अता न किया जाए, सही, जिसे न दिया जाए, जो चीज़ जिसके देने की उसे न दी जाए उसे कहते हैं महरूम। ये महरूम रह गया, हो सवाब से महरूम रह गया, सुनते हैं आप, क्या मतलब? यानी जो चीज़ इसे मिलनी चाहिए थी वो किसी भी वजह से उसको नहीं मिली। तो हम दुआ करें, ऐ अल्लाह हमें इस महीने में उन बंदों में शामिल फरमा जिन पर तेरी रहमत लाजिम वाजिब हो जाती है, उन बंदों में शामिल न फरमा कि जो तेरी रहमत और मगफरत से महरूम और तेरी अता से मुस्तरद कर दिए जाते हैं। मिलकर दुरूद भेजे मोहम्मद व आल मोहम्मद। भाई आपसे कहा होगा इतिकाफ में बैठना है, यही कहा था ना सबसे, ठीक है। पहली दफ़ा कौन कौन इतिकाफ में बैठा है? अब एक बच्चा आपकी तरह जो है ना वो इतिकाफ में आ गया, पहले दिन से फजर की नमाज उसने बैठ के पढ़ी, जोहर की नमाज भी बैठ के पढ़ी, असर की नमाज भी बैठ के पढ़ी, उसको जाना था कि वहाँ पे सहन में जाना था, वो बैठ बैठ के चल रहा है। उससे पूछे भाई बैठ के क्यों चल रहे हो? कहेंगे मौलाना साहब ने कहा था इतिकाफ में बैठा जाता है। बैठ के भाई बैठने का मतलब ये नहीं है कि नमाज भी जी बैठ के पढ़े, नहीं, नमाज जो है वो जैसे आप वाजिब है वैसे है। बैठी से मुराद ये कि यानी शरीक होना है, तो आप इतिकाफ़ की इबादत में शरीक हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कि दूसरी दफ़ा कौन बैठा है, और बाकी लोग बैठते रहे, यानी दो तीन हैट्रिक से ज़्यादा हो गई है। और पहली दफ़ा जो है वो तो फंस गया तीन दिन के लिए, उसको तो पता नहीं, दोस्त कह के लगे आ जाए यार चले इतिकाफ में चलते हैं, वो तो आ गया। कौन कौन दोस्त के साथ आया, ज़रा हाथ खड़ा करें। दो और बकिया, बकिया जो नए आए वो किसके कहने पे आए? अम्मी अब्बा ने कहा शोर बहुत कर दो, चलो जी तीन दिन छुट्टी हैं, कर्फ्यू में भेज देते हैं तुम्हें इतिकाफ के। तो इतिकाफ क्या है? इतिकाफ अल्लाह के घर में तीन दिन रुकना है, और तीन दिन अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना है, सही। तीन दिन क्या करते हैं? ना व्हाट्सएप है, ना वीडियो गेम है, ना मोबाइल है, ना इंटरनेट है, या अल्लाह है, या घर है, या मौलाना है जी। उसके बाद जो है वो इफ्तारी के बाद थोड़ी रौनक आती है तो चहल पहल शुरू होती है, गप्पे वप्पे शुरू होती हैं, ऐसे ही होता है ना, हैं टोलियाँ बन जाती हैं, इधर दो इधर चार इधर। आज तो पहला दिन है आपका, हाँ पहला दिन है ना, ये सब इतिकाफ में बैठे हुए, ये छोटे बच्चे भी माशाल्लाह। तो हमें क्या बनना है, क्या बनना है? अभी क्या दुआ की थी, हाँ जोर से, और क्या नहीं बनना? महरूम बनना है। खूब, इसके कुछ उसूल हैं कि हम कैसे मरहूम बन सकते, कैसे अल्लाह की रहमत हम पे आ सकती है, सही। रमज़ान, माह रमज़ान दर हकीकत एक चेंज है, एक तब्दीली है ज़िंदगी में। सुबह उठे उठे नहीं उठे, वो कहते हैं कि किसी से पूछा भाई कितनी नमाज़ें वाजिब हैं, कहेंगे मौलाना चार। मैंने कहा कौन कौन सी? मैंने दो रसम मगरिब इशा। मैंने कहा फजर? कहेंगे तो वाजिब ही नहीं। मैंने कहा क्यों? कहेंगे तो सोते में होती है, सोते पे तो वाजिब नहीं होती ना। अगले ज़माने में चार नमाज़ें वाजिब होंगी, नहीं पाँच नमाज़ें वाजिब हैं। अपने आप को नमाज के लिए उठाना वाजिब लाजिम है, इंसान पर नमाज के लिए उठे तो। आम दिनों में होता है इंसान सस्ती कर जाता है, लेकिन क्या है कि यहाँ भी चूंकि रोज़ा रखना है, सहरी करनी है, उठना पड़ता है और फिर जी नमाज के लिए जाना पड़ता है। किसी दिन सहरी के लिए आँख ना खोले उस दिन कितना मुंह बना हुआ होता है, और कोई दोस्त आ जाए तंग करने के लिए, अबे तंग ना करे यार मेरा रोज़ा है, मत्था घूम जाएगा मेरा, है बगैर सहरी के रोज़ा रखा है, हो लिहाजा उठना पड़ता है, अपने आप को उठाना पड़ता है ना, ऐसे ही होता है ना। सहरी करते नमाज पढ़ते 30 दिन सहरी भी की, नमाज भी की, अफ्तार भी की माशाल्लाह से, तो चेंज है या नहीं है? चेंज है। फिर एतकाफ़ में आए, एतकाफ़ ख़ुद ज़िंदगी में एक तब्दीली का नाम है कि 3 दिन तुम्हें ये एक्सरसाइज कराई जा रही है कि तुम अल्लाह के साथ ज़िंदगी बसर करने का तजर्बा हासिल करो। अल्लाह नज़र नहीं आता, अल्लाह का जिस्म नहीं, लेकिन अल्लाह को फील किया जा सकता है, अल्लाह को महसूस किया जा सकता है, अल्लाह के साथ ज़िंदगी गुजारने का तजर्बा इन 3 दिनों में आप हासिल कर सकते हैं। अब अल्लाह हाजिर है, नाजिर है, मौजूद है, ज़िंदा है, हई है, बातों को सुनता है, हत्ता बातों को नहीं सुनता बल्कि आँखों के इशारों को देखता है। ये जो हम ये कर रहे होते हैं ना, कोई आ जाता है तो ले भाई संभाल बड़ी भारी चीज़ आ गया, कहते हैं रिकॉर्डिंग करते नहीं करते लड़के आपस में, ले भाई ये जो इशारा किया आँखों से कि क्या है ये, उसको तो नज़र नहीं आया लेकिन अल्लाह के इसको क्या हुआ, लिख लिया गया, इसको क्या किया अल्लाह ने, करामत कातिबीन जो यहाँ दो फरिश्ते हैं उन्होंने क्या किया, इसको लिख लिया, इशारा है, देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, आवाज़ भी नहीं, फिर भी लिख लिया। तो अल्लाह सुनता है, देखता है, जवाब देता है, दुआएं सुनता है, कबूल करता है। फिर कहता है कि जो नौजवान मेरे साथ ज़िंदगी बसर करना चाहे वो इन 3 दिनों में आकर कम से कम 3 दिनों के लिए मेरे घर में आ जाए तो मैं उसे अपनी क़ुर्बत की लज्जत चखा सकता हूँ। 3 दिन ज़्यादा नहीं अल्लाह ने मांगे, कहता आप वो बिस्तर जिस पे सोते थे वो छोड़ के आ गए, वो तकिया जिस पे कभी कभी भाई से लड़ाई हो जाती थी, मेरा तकिया तेरा तकिया है, एक बेड पे सो रहे तो तू इधर क्यों आए, थोड़ा सा उधर हो जा भाई, 50-50 है बेड, होता नहीं होता छोटे भाइयों में कभी कभी अनबन हो जाती है, मेरी शर्ट क्यों पहन ली, मैंने इस तरीके करके लटकाई थी, मैं तेरी शर्ट पहन लूँगा, होती है छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये मोहब्बत होती है। अपना बिस्तर छोड़ के आ गए, तकिए छोड़ के आ गए, अपना घर छोड़ के आ गए, बहुत से बच्चों को नींद नहीं आती हर जगह, वो अपने घर में सोते हैं, ठीक है अपने कमरे में सोएंगे, अपनी जगह पर सोएंगे, नींद आएगी, वो भी छोड़ के आ गए, माँ बाप थे वो भी छोड़ के आ गए, वो फला शरबत पसंद अम्मा बनाती थी जी अब वो नहीं मिलता यहाँ पर, वो भी छोड़ के आ गए, नरम गद्दा वो भी छोड़ के आ गए, यहाँ पर क्या है या फर्श पे दरी पे सो रहे हैं, गर्मी भी है थोड़ी सी, ठीक है ना, मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना, छोड़ के आए ना आप, यानी खुदा के लिए छोड़ कर आएँ और किसके लिए छोड़ के आए हैं यहाँ पर और किसके लिए छोड़ के आए हैं? वो अखबार में तस्वीर तो छपनी 3 दिन के बाद आप ही विक्ट्री गले में हार डाला होगा और तस्वीर आपकी छपी गई अखबार में, नहीं ये 3 दिन किसके लिए छोड़ के आएँ? ये अल्लाह के लिए छोड़ कर आएँ, लिहाजा इन 3 दिनों में तजर्बा करें अल्लाह से मोहब्बत का, वो बेपना मोहब्बत करता है आपसे, यानी जितनी आप तसव्वुर नहीं कर सकते, आप तसव्वुर नहीं कर सकते, आपकी अम्मी कितनी, आपकी वालदा कितनी आपसे मोहब्बत करती हैं, लेकिन वो 0.1% भी नहीं है अल्लाह की मोहब्बत का, अल्लाह की मोहब्बत का 1% भी नहीं है। जैसे कि मारूफ है अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, 70 माओं से ज़्यादा, तवज्जो है, तो जब एक माँ की कितनी मोहब्बत होती है, माँ बेचैन हो जाती है बच्चे के लिए, 3 दिन बाद जा हो जाएंगे, अरे मेरा लाल आ गया, कलेजा आ गया, सीने से लगाएंगी, लड्डू वड्डू खिलाएंगी, आपको हार वार पहनाएंगी, बेटा जी कहाँ से आए, इतिकाफ से आया है जी, और शरबत भी बनाएंगी, उस दिन आप VIP दूल्हा बने हुए होंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद मुन्ने ज़रा बाजार से दही तो ले आओ, अरे अम्मा अभी तो आया हूँ मैं, और यहीं से इम्तिहान शुरू हो गया, बेटा 3 दिन इतिकाफ से गुजार के आए हो, अपनी आवाज़ क्या करो, नहीं आवाज़ नहीं आ रही, क्या करो क्या करो, और आप लोग नीचे क्यों कर रहे हैं, मैं इशारा करूँ आपके नीचे, क्या करो क्या करो, धीमी नीची जोर से तो बोले ना, मुझे पता लगा जाग रहे नहीं जाग रहे, दुरूद भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो 3 दिन एतकाफ में तजर्बा करते हैं अल्लाह से। ये जो आप देखते हैं ना कि आपको कहा गया कि मस्जिद की बाउंड्री से, मस्जिद की हुदूद से बाहर नहीं जाना, ये कहा गया ना। मौलाना ने बताया होगा मस्जिद की, ऐसे नहीं कि टहलते टहलते चले गए, चलो जी बाहर ज़रा सुपारी खा के आते हैं, गुटखा लेकर आते हैं मसलन। अब बेचैनी होती ना कुछ लोगों को, सिगरेट इधर जो है वो रोज़ा खोला नहीं, उनकी सिगरेट शुरू हो गई या उनका गुटखा उटका, हाँ भाई यार ज़रा ले आना मेरे लिए। अब ये चीज़ें भी अगर यहाँ नहीं छूटेंगी तो फिर कहाँ छूटेंगी। है वो कहते हैं कि जो लोग सिगरेट पीते हैं खसूसन मस्जिद की फिजा में, वो मलाइका के परवाज की फिजा को धुएँ से आलूदा करते हैं। अक्सर जगह लिखा होता है मलाइका के परवाज की फिजा को आलूदा मत करें सिगरेट के धुएँ से, ये लिख के लटका ले, बड़ा खूबसूरत जुमला है। सिगरेट नोशी मना है, नो स्मोकिंग, ये तो चलता ही रहता है, लेकिन एक थोड़ा सा एक नया जुमला ज़रा नया मार्केट में आ जाएगा जी। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। तो ये जो कहा कि एतिकाफ़ की, एतिकाफ़ में मस्जिद की हदूद से बाहर ना निकलो, इसका क्या मतलब है? यानी यहाँ पे तुम्हें दीवार नज़र आनी चाहिए कि बिला वजह मस्जिद से बाहर नहीं जाना है। अब तीन दिन के बाद एतिकाफ़ ख़त्म, अब आप गए घर, अब वहाँ मस्जिद तो नहीं है, तीन दिन आपको प्रैक्टिस कराई गई है, एक्सरसाइज कराई गई कि मस्जिद की हदूद से बाहर नहीं जाना है। कोई जा भी रहा होता ना, अरे अरे कहाँ जा रहे हो भाई एतिकाफ़ में, पीछे पीछे पीछे, वो बड़े बूढ़े डांट देते हैं पीछे, अच्छा अच्छा जी गलती हो गई मौलाना सॉरी, बड़े साहब गलती हो गई, वापस आ जाते हैं और बताया जाता है ना कि नहीं जाओ नहीं जाओ। ये तीन दिन क्यों कराया जा रहा है आपको? पता नहीं कि ये प्रैक्टिस है कि यहाँ पर दीवार है, लेकिन जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे वहाँ पर दीवार मस्जिद की नहीं होगी। ये दीवार से मुराद क्या है? मस्जिद की बाउंड्री से, मस्जिद की हदूद से बाहर ना निकलो, इससे मुराद अल्लाह का हुक्म है, यानी अल्लाह के हुक्म के उस तरफ कदम ना रखो। यहां पर अल्लाह का हुक्म क्या है? मस्जिद की बाउंड्री, कि मस्जिद की बाउंड्री से उधर नहीं जाना है, ये अल्लाह का हुक्म है ना। मस्जिद की बाउंड्री इज इक्वल टू अल्लाह का हुक्म, यानी मस्जिद की बाउंड्री के उधर कदम नहीं रखना है, अल्लाह के हुक्म के उस तरफ कदम नहीं रखना है। अब आप घर पहुंचे और वहां पर बाउंड्री नहीं है, लेकिन वहां पर एक और चीज मौजूद, वो क्या है? अल्लाह का हुक्म, सही। अब वहाँ पर अगर आंखें तीन दिन के इतकाफ़ के बाद अल्लाह के हुक्म के मुताबिक देखें तो सही है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कान सुने तो इसका मतलब आपका इतकाफ़ सही है। जितने दिन जी, जब शुरू शुरू में इंसान इतकाफ़ से घर जाता है ना, बटन लगा होता है अस्तगफिरुल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी वादे के रहमी, बताइए कोई काम तो नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ अब्बा मोहतरम मैं बाहर जा रहा हूँ, जा सकता हूँ जी छोटे भाई से? हाँ भाई कैसे हो भाई, ठीक हो, सब गुजर रहा है? तीन चार दिन जो है इतकाफ़ जो है ना वो आप पे छोड़ा जाएगा, तीन चार दिन के बाद अम्मा के बेटे देख ला, अरे अम्मा अभी तो क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, यहाँ से क्या हुआ रंग उतरना शुरू हो गया, ठीक है ना, ऐसे होगा ना। अब्बा ने कहा बेटा जी, अरे अब्बा अभी तो फिर ख्याल ओ इतकाफ़ से आया हूँ फिर थोड़ा, जी फरमाइए फरमाइए। अब क्या है कि इतकाफ़ का रंग उतरना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, अवश्य जो है चूँकि आदत नहीं थी ना, अब तीन दिन तो यहाँ तो बर्दाश्त कर लिया, ठीक है अल्लाह मियाँ को मौलाना को ठीक है, लेकिन वहाँ जाने के बाद वहाँ पर फिर आहिस्ता आहिस्ता रंग उतरना शुरू होता है। तो जितना अरसा हम एतिकाफ़ की फिज़ा में जिस तरह ज़िंदगी बसर करते हैं, ज़िंदगी बसर करते हैं यानी अल्लाह के हुक्म को मद्देनज़र रखते हैं, अगर अमली ज़िंदगी में एतिकाफ़ के बाद ईद के दिन दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, बहन भाई के साथ अगर हमारा अमल और अखलाक और किरदार ऐसा ही रहता है कि हम कोई गुनाह ना करें, इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हम एतिकाफ़ में हैं और एतिकाफ़ का असर बाकी है। तो हमें मरहूम बनना है, हमें महरूम नहीं बनना। तो कुछ चीज़ें हैं कि जो मैं रवायात की शक्ल में पेश करना चाहता हूँ, कौन सी चीज़ें हैं जो हम पर अल्लाह की रहमत को वाजिब कर देती हैं, कौन सी चीज़ें हैं वो, क्या करें कि अल्लाह की रहमत हम पे वाजिब हो जाए, तीन दिन के बाद माह रमज़ान के बाद हम अल्लाह के मरहूम बंदों में से हों, महरूम बंदों में से ना हों। यानी ये दुआ आपको ماہ رمضان کی شب تک شب عید تک کرنی ہے. اے اللہ ہمیں مرحوم بندوں میں سے قرار دے, ہمیں محروم بندوں میں سے قرار نہ دے. درود بھیجی محمد والے محمد. کچھ روایات ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ خدا کس طریقے سے اپنی رحمت کو اپنے بندوں پر واجب کرتا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ آپ تسبیح پڑھیں, اللہ اکبر, الحمدللہ, سبحان اللہ, یا استغفر اللہ, یا صلوات, یا کوئی بھی, سبحان اللہ, یا حیو قیوم, کوئی بھی اللہ کا نام ذکر کر رہے ہیں, تسبیح پڑھ رہے ہیں, یا تسبیحات اربعہ پڑھ رہے ہیں, سبحان اللہ, الحمد للہ, ولا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, کیا ہے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں. لیکن امام نے کہا یہ بھی ذکر ہے, لیکن اصل ذکر کیا ہے؟ اصل ذکر یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی گناہ آئے, آپ اپنے آپ کو اسے انجام دینے سے روک لیں. اصل ذکر یہ ہے. یعنی یہ ٹھیک ہے آپ تسبیح پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, ٹھیک ہے, یہ بھی ذکر ہے, لیکن اصل روح ذکر کیا ہے؟ کہ کوئی حرام کام آئے اس سے اپنے آپ کو روک لیں. اگر آپ نے حرام کام کے وقت اپنے آپ کو روک لیا, کوئی نامحرم جا رہی ہے اور آپ نے آپ اس کو نہیں دیکھا, کانوں سے گانا سن سکتے تھے, غیبت سن سکتے تھے, نہیں سنی, زبان سے کوئی برا لفظ بول سکتے تھے, نہیں بولا, ماں باپ کے سامنے چیخ سکتے تھے, نہیں چیخے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کے ذکر کی حقیقت کو پا لیا ہے. لہذا جب بھی دیکھنا ہو کہ آپ اللہ کے ذاکر ہیں, ذکر کرتے ہیں, اگر حرام کام کے وقت, گناہ کے وقت آپ اپنے آپ کو روک لیں, اپنے کان, آنکھ, زبان, ہاتھ پیر, فکر و خیال کو, تو آپ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اللہ کے ذکر سے. دوسری چیز کیا ہے؟ ایک دوسرے کو معاف کرنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ہمیں مرحوم رحمت پانے والا قرار دے. اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو, مولا علی کہہ رہے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو معاف کرے گا, میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا. اور پھر فرمایا, رحمت بانٹنے سے بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اب آپ کو میرے 3000 روپے عیدی ملی, اب آپ کیا کریں؟ 500 روپے امام زمانہ کے لیے صدقہ دیں مثلا, کسی غریب کی مدد کر دیں, صحیح, کسی یتیم کی مدد کر دیں, شہید فاؤنڈیشن میں کوئی پیسے دے دیں تاکہ ان تک, جو ہمارے شہدا کے بچے ہیں, وہ عید منا سکیں. وہ کیا ہے کہ رحمت کو بانٹنے سے بھی کیا ہے؟ رحمت کو بانٹنے سے بھی اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. وہ کون لوگ ہیں کہ جن پر اللہ اپنی رحمت بھیجتا ہے؟ توجہ رکھے گا, میں صرف روایات کا خلاصہ بتا رہا ہوں. پہلی چیز ہی کہ اپنے آپ کو پہچاننا. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, رحم اللہ امرأً عرف قدرہ ولم يتعدى طورہ. اللہ رحمت نازل کرے اس پر, اس کو مرحوم بنائے, اس پر اپنی رحمت بھیجے جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے. اور پہچانتے سے کہ مراد میرے ابا کا کیا نام ہے, میری اماں کا کیا نام ہے, میں کون سی گلی میں رہتا ہوں, مکان نمبر کیا ہے, میرا قد کتنا ہے, آئیے یہ مراد ہے پہچاننے سے؟ نہیں, پہچاننے سے مراد کیا ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ اپنے امام زمانہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں, آپ اپنے وطن کے لیے کیا کر سکتے ہیں, آپ امام زمانہ کے انقلاب کی راہیں ہموار کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں, آپ دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں, آپ امام حسین کے لیے کیا کر سکتے ہیں. یہ پہچاننا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. عرف قدرہ, اپنی قدر کو پہچانیں. اب جیسے آپ کو پتا ہے کہ مثلا 1 لیٹر کی بوتل میں 1 لیٹر پانی آ سکتا ہے, شربت آ سکتا ہے, 1.25 لیٹر اور 1.5 لیٹر نہیں آ سکتا, کیونکہ اس کی کیپیسٹی اتنی ہے. امام علی سے منسوب ایک شعر ہے, آتا زمان نگ جرم صغیر و فیکن تب عالم اکبر. تم سمجھتے ہو تم ایک چھوٹے سے وجود کا نام ہو صرف, जबकि तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ी यूनिवर्स और कायनात समाई हुई है। मसलन हमारी ख्वाहिशात क्या होती हैं जी, ईद के दिन शब ईद जाकर अच्छा सा फेशियल करवा लें, बाल बनवा लें, अच्छे से कपड़े मिल जाएं, 4-5 हज़ार ईदी जमा हो जाए, बस अच्छी से सैंडल हो। क्या यही आपकी कीमत है? क्या आप यही हैं? नहीं, आप इमाम ज़माना के मानने वाले नौजवान हैं। आपके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, तो अहले बैत की मोहब्बत जिसके दिल में होगी वो इन मादी ख्वाहिशात से आगे जाकर दर हकीकत वो सोचता है। वो ये सिर्फ लिबास और सैंडल और ईदी और ज़ाहरी चीज़ों के लिए परेशान नहीं होता। तवज्जो रखिएगा, रहम अल्लाह इमरान मन कदर मन अरिफ़ कदरा, जिसने अपनी कदर को पहचाना, अपनी कीमत को पहचाना, अपनी हकीकत को पहचाना। तो ये 3 दिन क्या है, आप अपनी हकीकत को पहचानते, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों यहाँ आया हूँ, मैं क्या लेने आया हूँ। ये सब क्या है, ये कीमत को पहचानना है। दूसरी चीज़ मौला अली फरमाते रहमल्लाह अब्दन राकब ज़म्बहु व खाफ रब्बहु, दूसरी चीज़ जो इंसान पर अल्लाह की रहमत को वाजिब करती है वो क्या है, वो अपने गुनाहों से खौफ खाना है, मुराकिब रहना है। मुराकिब किसे कहते हैं, यानी पीछे पीछे चलकर किसी का जासूसी करना। तवज्जो रखिएगा, रकीब दुश्मन को भी कहा जाता है, मुराकिब किसी कहते हैं जो किसी के पीछे जा रहा हो और देखें कि ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता चले कि आगे वाले को पता चल गया मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। जैसे कि मसलन आप कोई दुश्मन आ जाए और आप उसका पीछा करें कि देखें क्या कर रहा है। इमाम अली कह रहे हैं तुम अपने गुनाहों का ऐसे पीछा करो कि कहीं तुम्हारा शैतान, तुम्हारा नफ्स, तुम्हारी आँखें, तुम्हारे कान, तुम्हारी जबान, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर तुम्हें कहीं गुनाह ना करवा दें। लिहाजा उसके पीछे पीछे जहाँ वो करे फौरन उसकी गुद्दी पकड़ लो। राकबा ज़म्बहु, अपने नफ्स और अपने गुनाहों की देखभाल करने वाला हो उसको। बहुत ख़तरनाक दुश्मन होता है तो क्या, आपकी तो हिलना नहीं, हिले गोली मार दूंगा मैं, ठीक है ना। कोई मूजी जानवर आ जाए, सांप आ जाए, वो थोड़ा सा हिलेगा, आप क्या कहेंगे, आप बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ रखे बीन बजाते रहेंगे? नहीं, जैसे ही वो हिलेगा आप उसे मारने की कोशिश करेंगे कहीं मुझ पर हमला ना कर दे, क्योंकि तो मूजी जानवर है, मुझे हलाक कर देगा, जहर दे मैं मर जाऊंगा। या कोई ख़तरनाक दुश्मन बैठा है और वो आ जाए तो आप कहेंगे खबरदार हिले गोली मार दूंगा, उसे पता है कि वो हिलेगा गोली मार देगा तो वो भी चुप बैठा रहेगा। इमाम कह रहे हैं कि अगर चाहते हो कि अल्लाह की रहमत तुम पे आए, ये 3 दिन जो तुम्हारे पास हैं इसमें सोचो तुमसे क्या गलती हुई है, क्या गुनाह हुआ है, क्या खता हुई है, कहाँ माँ बाप से बदतमीजी की, कहाँ बात ऊँची की, कहाँ किसी दोस्त का मजाक उड़ाया, कहाँ किसी की इज्जत से खेले, कहाँ किसी को बुरे अल्फाज से याद किया, कहाँ किसी को फोश कलमा से याद किया, कहाँ किसी को गाली दी, कहाँ किसी को किसी का रिकॉर्ड लगाया, कहाँ किसी का माल खाया, कहीं किसी पे जुल्म किया हो। अब ये 3 दिन आपके पास मौका है, सोचें कि मुझसे क्या गलती हुई है, ताकि 3 दिन के बाद आप यहाँ से मुकम्मल तौर पर पाक होके जाएं। राकबा ज़म्बहु व खाफ रब्बहु, अपने रब से खौफ खाने वाला बने। और फिर फरमाया मौला अली की रिवायत है, दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद का, رحم الله امرا استقبل توبته واستقال خطيئته وبادر منيته, जो तौबा का इस्तकबाल करे उस पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। जो तौबा को गले लगाए, जो तौबा को वेलकम कहे, तौबा से हाथ मिलाए, शेक हैंड करे। और बाज़ औक़ात हमसे गलती हो जाती है, लेकिन अल्लाह ने एक दरवाज़ा खोला है, वो क्या है, तौबा का, कि इंसान तौबा करे और अपने आप को उस गलती से निकाल ले। तो इमाम कह रहे हैं तुम अगर चाहते हो कि तुम पर अल्लाह की रहमत हो तो तुम क्या करो, तौबा का इस्तकबाल करो, खुशी खुशी तौबा को गले लगाओ। ये 3 दिन जो आप आए हैं इसमें कोशिश करें कि यहाँ से पाक होके जाएं। دوسری چیز جو مولا علی نے فرمائی ہے اور اپنی خطاؤں کو کم کریں. اب آپ یہاں بیٹھیں اور ایک پیپر پر کوڈ ورڈ میں اپنے چیزیں لکھیں کہ میں نے کیا 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 آگے غلطی کی, وہ کسی کو دیئے گا نہیں, کوڈ ورڈ میں لکھیں تاکہ کوئی اگر پڑھ بھی لے تو اسے سمجھ میں نہ آئے. اور پھر ایک ایک کر پہ اللہ سے کیا کریں, اے خدا میری آنکھوں نے برا منظر دیکھا, اے خدا میرے کان نے برا منظر, اے خدا میں فلاں جگہ اپنی والدہ پہ چیخا تھا, ان کا کہنا نہیں سنا تھا, وہ مجھے بلا رہی تھی میں چھوڑ کے چلا گیا تھا, میں نے اپنے باپ کو ستایا تھا, میں نے اپنے بھائی کو مارا تھا, میں نے بہن کو چٹکی نوچی تھی, ہوتا ہے نا بہن بھائی میں لڑائی ہوتی ہے, میں نے فلاں کا کام نہیں کیا تھا, مسجد جا رہا تھا اذان ہو رہی تھی میں نہیں گیا. یہ کیا ہے, اس کو کہیں ایسی کوڈ ورڈ میں لکھیں اور اللہ سے کہیں کہ اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے, کم کرنے کی کوشش کریں. یہ تین دن اللہ نے آپ کو اپنے مہمان بنایا ہے, آپ وی آئی پی گیسٹ ہیں, اللہ میزبان ہیں, آپ مہمان ہیں, اور مہمان کی عزت کرنا میزبان پر لازم و واجب ہوتا ہے. لہذا آپ جو دعا کریں گے انشاءاللہ, جو دعا کریں گے جس میں گناہ نہیں ہوگا وہ دعا قبول ہوگی. درود بھیجے محمد و آل محمد. اس میں اور بھی چیزیں ہیں لیکن بس اتنا ہی رکھتا ہوں میں, کیونکہ وہ پھر بوریت کا سبب ہوگا. تو ماہ رمضان در حقیقت کیا ہے, وہ تبدیلی کا مہینہ ہے. ماہ رمضان در حقیقت چینج کا مہینہ ہے. ماہ رمضان در حقیقت اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگانے کا مہینہ ہے. غلطیاں ہوتی ہیں سب سے ہوتی ہیں, گناہ ہوتے ہیں سب سے ہوتے ہیں, لیکن ان سے واپسی کا راستہ اللہ نے کھولا ہے. ایسا آپ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں کو 12 سال, 14 سال, 16 سال, 18 سال, یہ اللہ تعالیٰ نے واپسی کے دروازہ کھولا. لہذا ضروری ہے کہ یہ جو وقت ملا ہے تلاوت میں, دعا میں, اور ایک حصہ آپ کے لیے مخصوص کے جس میں ہر انسان الگ الگ ہو جائے. رات کا وقت سب سے بہترین ہوتا ہے, اگر آپ سوتے نہیں تو رات میں کیا کریں, باتیں کرنے کے بجائے بیٹھ جائیں اور سوچیں کہ آپ نے کون سا گناہ کیا تھا, کون سی غلطی کی تھی. اے خدا, جیسے تسبیح ہے کسی کے پاس, یہ شب قدر میں جو آپ کہتے ہیں اسف اللہ اسف اللہ اسف اللہ, ابھی تیری کتنے ہوں گے اسف اللہ اسف اللہ اسف اللہ, ہوتا ہے نہیں. یا ہمارے یہاں وہ جوشن کبیر بھگانے کی عادت ہوتی ہے, پتہ نہیں چلا کیا ہوا, پتہ چلے گا آپ کو کیا کہا آپ نے, سبحان کا یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلص من النار یا رب, اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے, سبحان کا یا لا الہ الا انت الغوث الغوث, اس کو بھی گھڑی کو بتایا ادھر سے ٹھوک تیز چل بھائی تیز بڑھا, اور پڑھنے والے کام ہوتے ہیں پھکوانے والے دادا ہوتے ہیں, مولانا اتنے پھونک دیں پھو پھو پھو, یہ بیماری پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے. پہلے ایک بیماری ہوتی تھی جب ماں آپ کی سطح چھوٹی جو بچے تھے وہ ڈوری بننے والی, ابھی ہے نہیں ہے, ابھی یہ بلا ہے اس کو چھوڑ دیں, یہ بلا وہ پیر میں لے کے بیٹھ جاتے تھے ایسے کر کے ہم لوگ یوں کر کے بنتے تھے, اور پھر ٹیڑھی ہوتی تھی پھر وہ دیکھ ابھی تیری صحیح بن رہی ہے میری صحیح, پوری توجہ کس پہ ڈوری پہ ہوتی تھی, بیٹا یہ ڈوری بلا ہے بری بات ہے یہ, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر پھونک بھی مارنی ہوتی کہ پھونک اڑ نہیں جائے, گرا لگانے پھر گرا لگاتے تھے, ہو یہ بلا ہے یہ مصیبت ہے, یہ کسی امام نے نہیں کہا یہ ڈوری تمہیں بچائے گی, وہ امام زامین کا کپڑا آپ کو بچاتا ہے, امام زامین کا کپڑا نہیں بچاتا بھائی, ہم سوچتے امام زامین مان لیا ساری بلاؤں سے دور ہو گئے, وہ فلسفہ الگ ہے, امام زامین کا کپڑا نہیں بچاتا ہے یہ ڈوری نہیں بچائے گی, امام زامین باندھنا ایک الگ چیز ہے, امام کی زمان میں دینا ایک الگ چیز ہے. بات آگے طور کروں, پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, سفر پہ جا رہے ہوتے تھے تو لہذا کسی کو پیسے دیتے تھے تو اس کو برا لگتا تھا, تو کپڑے میں کیا بھائی یہ امام زامین ہے, یعنی امام زمانہ کی ضمانت پر کسٹڈی میں تمہیں دے دیا تم محفوظ رہو, اور ایک باندھ دیا یہ تاکہ یہ جو پیسہ ہے کہیں تمہیں ضرورت پڑے تو خرچ کر لینا, امام زامین یہ تھا, نہ کہ کپڑا ہمیں بچائے گا, کپڑا نہیں بچاتا ہے, لہٰذا یہ ڈوری نہیں بچائے گی جس کا پھوکے مار مار کے پھو 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 کر کے باندھ رہے ہیں اور لگا رہے ہیں, پوری توجہ اس پہ ہوتی ہے. ہو میں کہوں
मैं आपके पास आया था, कह रहे हैं आप लोगों में ठीक हूँ, आप आपके मौलाना क्या कह रहे हैं आप, मैं ऐसे तीर्थ से पढ़ूँ, आप कहेंगे मौलाना क्या कह रहे हैं, खैरियत तो है कि तेजगाम क्यों चल रही है, और भी तेजगाम हम चला रहे हो अल्लाह से, सुबहान के अला 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 तो सुबहान के अला अला, फ़ायदा नहीं है इसका कोई, या वो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी या अल्लाहुम्म लन क़त्ल 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 अमीरुल मोमिनीन, सुकून से पढ़ो। अबे तेरी कितनी हो गई, फिर उसने तेज कर दी। वो दोस्तों में यही होता है ना, जो दोस्त बैठे होते हैं वो भी एक दूसरे रेस लगा रहे होते हैं। तो अर्ज कर रहा था कि सुकून से समझें कि आप क्या कह रहे हैं, लिहाजा हर एक कोने में बैठ जाए और देखें कि उसने क्या अमल किया है बुरा, क्या गुनाह किया है, उसको निकालने की कोशिश करें। और अकेले बैठेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा आपने क्यों किया, आपको वजह पता चल जाएगी, ये फला बुरा काम मैंने फला की वजह से किया था, लिहाजा उसको छोड़ना ज्यादा आसान है। और फिर आप उसी वक्त तन्हा बैठे बैठे किसी भी इमाम के मसाइब पढ़ लें, जनाब जहरा के खुद मसाइब पढ़ें कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। यकीन कीजिए कि अगर उस वक्त आपकी आंख में एक आंसू भी आ जाए और आपका दिल टूट जाए अहले बैत के मसाइब में, तो आपकी दुआ कबूल, आपकी तौबा कबूल। लिहाजा कोशिश करें। एक बहुत बड़े मुश्तहिद थे आगा शरीयत मरहूम, जो जिनका कराची में इंतकाल हुआ, वो कहते थे शब कदर में आओ खुदा से झूठ बोलते हैं। तो लोग कहेंगे मौलाना क्या कह रहे हैं आप, खुदा से झूठ बोलें, कहेंगे और क्या, आओ खुदा से झूठ बोलो। आज तो खुदा से साफ साफ कहते हैं खुदा मैं झूठ बोलने आया हूँ शब कदर, कहेंगे मौलाना क्या कह रहे हैं आप, हम इबादत और अमाल कर रहे हैं आप कह रहे हैं खुदा से झूठ बोलने आए, कहेंगे और क्या, ये जो तुम पढ़ते अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व तौबा इलैह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व तौबा इलैह, ये तुम खुदा से झूठ बोलते हो। नहीं नहीं मौलाना, हम अमाल करने आए। कहा कि दिल में तो वही होता है ना 420 अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व तौबा इलैह, फलां की टांग खींचूंगा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व तौबा, अम्मा पर चीखूंगा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व तौबा, नाम रंग को देखूंगा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व तौबा, गाने नहीं छूट सकते अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व तौबा, दोस्ती यारी नहीं छूट सकती अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व तौबा, सिगरेट नहीं तर्क होती अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व तौबा, क्रिकेट खेलने जाऊंगा अम्मा को नाराज करके अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व तौबा, दोस्तों का रिकॉर्ड लगाऊंगा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व तौबा। ऐसे ही होता है ना, बहुत सारे ऐसे गुनाह होते हैं जिनको हम छोड़ना नहीं चाहते, अभी ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी छोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, खुदा से कह रहे हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व तौबा, ऐ खुदा झूठ बोलने आया हूँ अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व तौबा, ऐ खुदा तुझसे झूठ बोलने आया हूँ अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व तौबा, ऐ खुदा ज़बान से करो मुझे माफ़ कर दे लेकिन मैं नामहरम को देखना नहीं छोड़ूंगा, ऐ खुदा मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे मैं गीबत करना नहीं छोड़ूंगा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व तौबा, ऐ अल्लाह हम उसे गाने नहीं छोड़ते, टॉप 10 के गाने बड़े ज़बरदस्त आए FM पर। इसका मतलब है कि दाल काली है, दाल में काला नहीं है, दाल काली है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, ये एक गाने का मतलब क्या है, एक गुनाह को ये इधर से इधर आए तो तुम गुनाह से निकल के इधर आ जाओ, ये दाना तो इधर आ गया लेकिन तुम जहां थे वहीं खड़े रहे, ये तौबा नहीं है। अब आपको एक 100 मीटर की रेस दी जाए, आपने यहां से यहां तक भागना है, ठीक, कोई भागे नहीं, कहेगा अस्तग़फ़िरुल्लाह मैं जीत जाऊंगा वो जीत जाएगा, वो नहीं जीतेगा, और भागना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, रेस लगानी पड़ेगी। ये दाना इधर से इधर आ जाए ये अहम नहीं है, तुम गुनाहों को छोड़कर मौला अली के चाहने वालों में आ जाओ, तुम गुनाहों को छोड़कर इमाम ज़माना के चाहने वाले नौजवानों में आ जाओ, ये असल तौबा है। हमारी पूरी तवज्जो क्या होती है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी अस्तग़फ़िरुल्लाह, वो भी तेज़ पढ़ रहे होते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, उसको पता नहीं पढ़ क्या रहे हैं। और कोई मेहमान आ जाए आपके, कहते हैं आप ठीक हैं, मैं पानी वाला छोड़ देता हूँ, भाई क्या हो गया, खैरियत है, क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो, अल्लाह से कैसे बात करें। ज़ियारत हो रही होती है, अस्सलामु अलैकुम या वारिसा दमसफतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या वारिसा नूहिन नबी अल्लाह, पैर खुजी चल रही है, SMS चल रहा होता है, अरे मौलाना इतना लंबा खुतबा कर दिया, भूख लग रही है, नींद आ रही है, चक्कर आ रहे हैं जी, 10 गालियाँ सुना रहे थे मौलाना को, अरे मौलाना जल्दी करो। मुजारत ऐसे होती है नहीं, टीवी में कोई कार्टून आ रहा होता है, ड्रामा आ रहा होता है, क्रिकेट आ रहा होता है, कैसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे होते, चाय भी ठंडी, पानी भी ठंडा, सब कुछ ठंडा हो जाता है, लेकिन वो शॉर्ट मिस नहीं होना चाहिए, होता ही नहीं होता। लेकिन अल्लाह के लिए, इमाम के लिए ज़ियारत हुई, सर खुजा रहा है, सर गए, पैर खुजा रहा है, गुजार कर रहा है, वो उधर तबर्रुक बढ़ रहा है, उस पर नज़र होती है क्या बढ़ रहा है, मिस नहीं हो जाएगी। सबसे पहले मैं जाऊँ, अस्तग़फिरुल्लाह का मतलब ये है कि ये दाना इधर से नहीं आए इधर उधर, तुम इधर से उधर हो जाओ। माह रमज़ान के बाद, एहतिकाफ़ के बाद देखना है कि तुम्हारा अस्तग़फिरुल्लाह कबूल हुआ नहीं हुआ। ये देखो, अगर रमज़ान के बाद, एहतिकाफ़ के बाद तुम गुनाहों को छोड़कर इधर आ गए हो, इसका मतलब है कि रमज़ान की अस्तग़फिरुल्लाह कबूल हो गई। कोई अगर नहीं, वही आदत थी जैसे आए थे वैसे ही है माशाल्लाह से जी, तो फिर होगी तौबा, नहीं होगी, नहीं होगी, तवज्जो रखिएगा। लिहाजा तौबा का मतलब ये मौला नहीं कि तौबा करोगे अल्लाह की रहमत नाजिल होगी, तौबा यानी चेंज, यानी इस्लाह, यानी तब्दीली, यानी कुछ नया। लिहाजा रिवायत में है कि तौबा करे और अपने दोस्तों को तब्दील ना करे, वही दोस्त जो तौबा करने से पहले थे, तौबा करने के बाद वही दोस्त हैं, इसका मतलब है तुम्हारी तौबा नहीं है। तौबा करने के बाद अगर आपका अखलाक तब्दील ना हो, वहीं आपने तौबा की 3 दिन के बाद अगर आपका अखलाक तब्दील नहीं हुआ, तो इसका मतलब है इतकाब का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपके अखलाक में तब्दीली, आपकी नमाज में तब्दीली, यहाँ पे मैंने बताया कि बाउंड्री है, आम ज़िंदगी प्रैक्टिकल लाइफ में बाउंड्री नहीं होगी, वहाँ पे आप होंगे और आप होंगे और आपका अमल होगा, वहाँ हुक्म खुदा होगा, हुक्म खुदा होगा यानी आँखें हराम नहीं, कान हराम नहीं, ज़बान हराम नहीं, वाज़े नहीं हो। तो तौबा का हकीकी मफहूम अमली तौर पर अपने आप को गुनाहों से निकालना है। जब आप यहाँ से जाएंगे ना 3 दिन के बाद, जब मैंने पूछा इन बच्चों से, अभी और जगह इतकाफ ख़त्म हुआ है, तो उन्होंने पूछा, कह रहा ऐसा लग रहा जैसे दुनिया बिल्कुल नई हो गई हो, ऐसा लग रहा बिल्कुल हल्के हो गए हों, ऐसा लग रहा जैसे बिल्कुल धुना धुल गए हों, हर चीज़ नई नई नज़र आएगी आपको। यानी नई से मुराद क्या है, आपको एक नया रंग नज़र आएगा, एक नई तवज्जो होगी कि अल्लाह ने आपके गुनाहों को माफ़ कर दिया। वो माफ़ कर देगा, वो कहेगा एक दिल से कह दो एक एक। बहुत सारे नौजवान थे, एक नौजवान था वो जो गिटार बजाता था, हर वक्त गाने गाता था, एक दिन जा रहा था उसका गिटार का तार टूट गया, तो वहाँ से एक बहुत बड़े आरिफ और आलिम जा रहे थे, तो उसने पूछा कि आगा साहब बताइए ये गिटार का तार जो है वो कहाँ जोड़ता है। उन्होंने कहा फलां बाजार जाओ वहाँ जोड़ता है। ये चला गया, कहेंगे रुको, ये रुक गया जी, कहेंगे देखो ये जो गिटार का तार है ना, सितार का तार, ये तो जोड़ सकता है, लेकिन अगर अल्लाह से तुम्हारे दिल का तार टूट गया वो कहीं नहीं जुड़ सकता, वो सिर्फ अल्लाह ही जोड़ सकता है, या अल्लाह वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद जोड़ सकते हैं। ये कहे गुजर गए। अब ये तो इसके लिए एटम बम था, ढड़ों से जाके इसके दिल पे लगा, ये तो हिल गया, दिल का तार अल्लाह से टूट जाए, बस उसने कहा छुट्टी, उसको वहीं फेंका गिटार को और तौबा कर ली। एक सेकंड तब्दीली। बहुत सारे ऐसे नौजवान थे कि जिन्होंने गुनाह किए। एक रसूल तौर का वाक्य आपने सुना होगा, एक शराबी नौजवान था, यानी हर गुनाह का काम करता था, जो तसव्वुर कर सकते हैं वो गुनाह करता था। एकदम मजलिस हो रही थी, अपने बदमाशों के साथ इस मजलिस में आने लगा, तो चूँकि बहुत यानी झगड़ालू था, बदतमीज़ था, लोग समझते थे ये जुल्म करता है, ये शराब पीता है, ये लड़कियाँ छेड़ता है, ये फिल्में देखता है, तो इसको मजलिस में आने नहीं दिया, ताकि तुम चले जाओ यहाँ नहीं आओ। ये चला गया, रात को जिसके घर मजलिस थी, वो ख्वाब में देखता है कि एक जगह है कि जहाँ पर एक खेमा लगा है और कहा जा रहा है कि वो खेमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। तो ये कहते हैं सब लोग जा रहे थे, मैं भी जाने लगा तो देखा एक कुत्ता है कि जो बार बार इस पर भौंक रहा है, तो इसको जाने नहीं दे रहे इमाम की तरफ। तो कहेंगे मैंने जब गौर करके देखा तो उस कुत्ते की शक्ल जो थी उसी रसूल तुर्क से मिल रही थी, उसका नाम रसूल तुर्क था, उस रसूल तुर्क से मिल रही थी। कहें ये देख के मैं परेशान हो गया। सुबह को उठा और मैं पूछता पाछता उसके अड्डे में पहुँचा जहाँ पे वो रहता था, देखा अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है और ये जिसके घर मैली से जिसने उसको रोका था ये उसके हाथ पैर पड़ गया, मुझे माफ़ कर दो। मगर खैरियत है तुम्हें क्या हो गया, तुम तो बहुत नेक इंसान हो, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, ये तुम क्या कर रहे हो। तो उसने ख्वाब सुनाया कि ऐसा ऐसा वाक़या था, मैंने देखा कि मैं इमाम की तरफ जाना चाहता हूँ, एक कुत्ता जो मैं रोक रहा हूँ उसकी शक्ल तुमसे मिल रही थी या उसकी शक्ल में तुम्हारी तस्वीर थी। उसने कहा क्या इमाम हुसैन ने बतौर सग मुझे कबूल कर लिया है। कहने ये कहना था कि उसने वहीं से सब कुछ छोड़ दिया एक लम्हे में, उस नौजवान ने जो कई सालों तक गुनाह करता रहा, उसने कहा अगर हुसैन मुझे मेरी तौबा कबूल कर सकते हैं तो क्या मैं हुसैन के लिए गुनाहों को नहीं छोड़ सकता हूँ, सब कुछ छोड़ दिया। अब ये इरादा आप में आना चाहिए, बस आपकी रहमत तमाम के तब्दीली, खुदा की रहमत चाहिए। अल्लाहुम्मा जाली मिनल मरहूमीन, या अल्लाहुम्मा जाली मिनल रहमत पाने वालों में से करार दे, हमें महरूम महरूमीन में से करार ना दे। कुछ चीज़ें मैंने बताई आपको कि माफ़ करने से रहमत आती है, बख्शने से रहमत आती है, अपनी कदर कीमत पहचानने से रहमत आती है, और आपकी खिदमत में अर्ज करूँ तौबा करने से रहमत आती है, और अपने आप को अल्लाह के हवाले करने से रहमत आती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको हकीकी माना में तौबा पर साबित कदम रखे और हमारी इस इन इबादत को कबूल फरमाए और हमें मरहूमीन में से करार न दे, महरूमीन में से करार न दे, महरूमीन में से करार दे और महरूमीन में से जी करार न दे, यानी हम मरहूम बने, खुदा की रहमत पाने वाले बने लेकिन महरूम न बने। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अब अगर कोई सवाल किसी की समझ में कोई नुक्ता ना आया हो, सबकी समझ में आ गया, कोई मौलाना मजलिस पढ़ने गया शराब तो आगे बैठे हैं उनसे माजरत से। तो देखिए एक साहब सबसे पहले आते थे और पूरी मजलिस में सर हिलाते थे ऐसे ऐसे करके, मौलाना का यार किसी की समझ में आए ना इनकी समझने जरूर आया। जब आखिरी मजलिस हो गई ना और सबसे पहले आते थे तो आखिर में जाते थे और हर बात पे ऐसे ऐसे सर हिलाते थे। तो उन्होंने पूछा भाई आप पूरे अशरे आए और सबसे आगे आगे बैठते थे आगे वालों से माजरत और सर हिलाते थे, आप मेरे अशरे को सही समझिए, आप मेरे सही फ़ैन हैं। उनका नहीं जरा घर में शोर होता था, थोड़ी देर आके यहाँ सो जाता था, वो जो समझते थे मौलाना कि ये सर हिला रहे हैं वो नींद के झोंके ले रहे होते थे। ठीक है तो सबकी समझ में आ गया, ये नींद के झोंके ले रहे थे। हाँ दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कोई सवाल नहीं है जी जी, रकीब का मुराकिब, मुराकिब यानी किसी की देखभाल करना पीछे पीछे रहते, हाँ जासूसी नहीं किसी की देख, मसल बच्चा जैसे जा रहा है आप उसके पीछे भी जाते हैं गिर नहीं जाए बच्चा, ठीक है ना, इसको क्या मुराकिब कहते हैं। जैसे कहते नहीं हैं आगे पीछे कौन आए कौन आए कौन आए, अली आए अहमद, अब आप अली को बुलाना चाह रहे हैं, अली चलना शुरू करता है उसे चलना नहीं आता, अब आके आप बंद किए हुए होते लेकिन खुद देख रहे होते ऐसे ऐसे करके, ऐसे ही होता है ना, ले आप मुराकिब होते हैं कि वो गिर नहीं जाए, इसको कहते हैं मुराकिब। माँ या बाप या चचा या मामू कोई भी उसको कह रहे आ जा वो हाथों को फैलाए भाई, खुद भी आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन वो चाहता है वो चलना सीखे, वो आगे आए। तो क्या होता है कि वो उसे गिरने, जैसे गिरने लगता है फौरन पड़ गया उसे पकड़, इसे कहते हैं मुराकब, यानी उसकी देखभाल करो ताकि वो गुनाह ना करे तुम्हारा नफ्स, इसको कहते हैं। और कोई सवाल जी? रकीब दुश्मन को कहा जाता है, रकीब रकाबा से है, रकाबा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं गर्दन को। आप दुआ पढ़ते ना, बेफिका के रकाबती मिनन्नार, क्या मतलब मेरी गर्दन को आतिश जहन्नम से आज़ाद कर दे, बेफिका के रकाबती, वो रकीब उसी से, रकीब दुश्मन को मुराकिब देखभाल करने वाला। मुराकबा सुना है, मुराकबा इन्हें अपना ख्याल रखना जी। वसवास इंसान के अंदर बाज़ औक़ात शैतान इस तरह वसवसे करता है कि वो आपको ये बावर करा देता है कि आपकी सोच है, ये होता है। मसलन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सामने अभी गुनाह का नाम लिया जाए तो कहेंगे यार सफला आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं जगह में बैठे हूँ, ठीक है ना। बड़े से बड़ा गुनाह का नाम लिया जाए यहाँ दिल नहीं चाहेगा, क्यों, यहाँ के उस यहाँ का माहौल अलग है। लेकिन जैसे इंसान आम दुनिया में जाएगा वो वहाँ पर अगर आप थोड़े दिन के बाद उससे वो बातें करें गुनाहों की, वो कहेगा हाँ ठीक है चलते हैं, गुनाह करने के लिए कोई मसला नहीं है, ठीक है। शैतान वसवसा ऐसे करता है कि वो आपको करा देता है कि आपका इसके बगैर चारा नहीं है, गुनाह के बगैर, या ये आपकी अपनी सोच है। तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि वो हमें शैतानी वसवसों से दूर रखे, और फिर खुद भी कोशिश करनी चाहिए कि हम वसवसों से दूर रहें। यानी उसमें फिर उलमा से या किसी भी माहिर नफ्सियात से पूछें कि क्या काम करें कि हम शैतानी वसवसों से दूर रहें। आम हालत में ये होता है शैतान हमें इतना बहका देता है, इतना बहका देता है कि समझते हैं कि जब तक मोबाइल पर गेम नहीं खेलेंगे रोज़ा नहीं तब गुजरेगा हमारा, या मतलब फला काम नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी नहीं गुजरेगी, या फला अमल नहीं अंजाम देंगे तो मिसाल के तौर पर हमसे नहीं हमें ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। नहीं, ये सब शैतानी वसवसे। वो कहता है गुनाह के अलावा तुम्हारा चारा ही नहीं है, गुनाह के साथ ज़िंदगी है, तो ये भी एक वसवसा है। उसी तरह कोई भी वसवसा है वो शैतान इतना करता है, इतना करता है, इतना करता है कि वो आपको यकीन दिला देता है कि आप उसे अपनी सोच समझ के उसको एडॉप्ट कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं। तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि इंसान जो है वो क्या वसवसों से दूर रहे और ख़ुद भी कोशिश करे। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात।